بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات عیدان محترم مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلے گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو غروب کے وقت سے لے کر الى غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، غروب کا وقت رات کا اندھیرا، وقرآن الفجر، اور صبح میں بھی نماز قائم کرو۔ تو وقت بتلایا قرآن نے کہ زوال کے بعد نماز قائم کرو، رات کے وقت نماز قائم کرو اور صبح کے وقت نماز قائم کرو۔ اوقات نماز قرآن نے بتلایا اور طریقہ نماز میرے نبی نے بتلایا۔ طریقہ نماز میرے نبی نے بتایا۔ اور کل جیسا کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 18,000 مرتبہ مدینے والوں کو نماز پڑھ کے دکھلائی، یعنی 18,000 مرتبہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ایسے پڑھنی ہے۔ تو جب 18,000 مرتبہ کی چیز یاد نہ رہے تو ایک آدھ مرتبہ کی چیز کیا یاد رہے گی؟ میں ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے اور سلسلہ فکر کو اس مقام سے بہت آگے بڑھ جانا ہے، تو نماز کا وقت بتلایا قرآن نے، نماز کا طریقہ بتلایا میرے نبی نے، اور نماز پڑھ کے دکھلا دی کہ سلو کما رہے تمونی اسلی، جیسی میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو۔ اور اب جب مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا تو اب ضرورت ہوئی کہ دور دراز کے علاقوں میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں انہیں نماز کے لیے بلایا جائے، تو اب اذان سامنے آئی۔ تھوڑا سا اس مرحلے فکر پہ آرام سے سن لو۔ اذان سامنے آئی، अजान मेरे अकीदे के मुताबिक वही इलाही से आई है। ठीक है, कुछ रवायात पाई जाती हैं कि बाद लोगों के मशवरे से अजान की याद हुई, लेकिन चूंकि मैं दीन खुदा को मशवरों का पाबंद नहीं समझता, कहा गया है कि कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह बहुत दूर के महलों में मुसलमान आबाद हैं, तो कोई एक तरीका आप याद फरमा दें, और ये तरीका यूं हो तो ज्यादा बेहतर है, यानी मशवरा दिया गया तो मेरे नजदीक अजान आई है वही इलाही से, इसलिए कि दीन इलाही में न इजमा की का कोई दखल है न शूरा का कोई दखल है, गुंजाइश नहीं है गुंजाइश। और उसके बाद एक अजान देने वाले को मुअय्यन किया गया जिसका नाम है बिलाल हबशी, सब जानते हैं, ये हबशी का लफ्ज़ बतला रहा है कि एक काला इंसान है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। दो जुमले इनके मुतल्लिक भी सुनते जाओ, ये तो एक मुसलसल खत्ते फिक्र है ना, घंटों में मुश्तमिल, तो अब ये चीजें मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सुवारत हो रही है। काला इंसान, अच्छा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के शजरे का भी पता नहीं, अच्छा गुलाम, वो आजाद अरबों का मुआशरा, उसमें गुलाम शक्ल काली और सही अरबी भी बोल नहीं सकता, जब वो कहता है अशहदो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदो अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो शीन नहीं निकलती, सीन निकलती है। ठीक है, ऐसे आदमी को पैगंबर अकरम ने मुअज्जिन बना दिया। ठीक, कितने अच्छे अरब थे सदर इस्लाम के, और कितने खूबसूरत मुसलमान के सदर इस्लाम के, कि जो रसूल ने कर दिया उसको चैलेंज नहीं किया किसी ने। भाई मेरा मैसेज पहुंच गया या नहीं? भाई बिलाल को मुअय्यन कर दिया, कोई सुर्खों सफेद अरब को मुअय्यन कर देते, कोई अच्छे शजरे वाले को मुअय्यन कर देते, ना शजरा ठीक ना शक्ल अच्छी ना राजा ठीक, अब रसूल ने मुअय्यन कर दिया तो मुअय्यन कर दिया। कहा बिलाल गुलदस्ते अजान पे खड़े हो जाओ, तो जिसे रसूल ने गुलदस्ते अजान पे खड़ा कर दिया किसी की हिम्मत नहीं कि उसे हटा सके, तो रसूल जिसे मिंबरे गदीर पे बिठा के चला जाए। अब अजान, अजय अजान के मुताबिक भी दो जुमले सुनते जाओ, और बहुत दूर जाना है और बहुत आराम आराम से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अजान इतनी अजीब इबादत है, इतनी अजीब इबादत है कि वाहिद इबादत है पूरे इस्लाम में, वाहिद इबादत है जो शुरू होती है अल्लाह के नाम से और खत्म होती है अल्लाह के नाम पर। सोच रहे हो ना, रोजाना अजान देते हो, कहां से शुरू करते हो? अल्लाह अकबर। खत्म कहां करते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह से ये इबादत शुरू हुई, अल्लाह के लफ्ज से, और अल्लाह ही के लफ्ज पर ये इबादत खत्म हुई। इतनी अजीम और इतनी शरीफ इबादत है, तवज्जो रखना। यही सबब है कि जब बच्चे पैदा होते हैं मुसलमान घरानों में तो उनके कान में अकायद है ना, अजान में अकायद है, उनके कान में अजान और इकामत कही जाती है, कही जाती है ना। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि मैं आराम से आगे बढ़ रहा हूं और कहीं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन अभी वो मंजिल दूर है। अच्छा, तो अब हमने शुरू किया अल्लाहु अकबर और खत्म किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से शुरू हुई लफ्ज अल्लाह से और लफ्ज अल्लाह पे अजान खत्म हुई। हमने बच्चों के कानों में अजान भी डाल दी, इकामत भी डाल दी, ताकि पैदाइश के वक्त से अकीदा उसके कानों में पड़ जाए। ठीक, और जब मरा इंसान तो उसे तलकीन पढ़ाई फिर अकीदा समझाया, यानी जब तवज्जो रखना, जब गहवारे में आया तो अकीदा बतलाया, जब गोर में गया गौर यानी कब्र, जब गौर में गया लहज में गया तो अकीदा बदलाया, यही है ना। अब एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूं और खुदा की कसम सबने लिखा है, सबसे जब मैं ये जुमला कहूं ना इसका मतलब है कि लोग मुख्तलिफ मसालिक के लोग इस रिवायत पे मुत्तफिक हैं। तो कब सिखाया अकीदा? गहवारे में, ठीक। और फिर कब सिखाया? गौर में। भाई मेरे नबी ने कहा उत्तुबुल इल्म मिनल महद इलल, इल्म हासिल करो गहवारे से गौर तक। इस पर अमल हमारे फिरके के अलावा कोई नहीं करता। चैलेंज है कि हमारे अलावा इस हदीस नबवी से कोई अमल नहीं करता। भाई अब आगे बढ़े, अजान खत्म हुई, अकामत खत्म हुई और अब अल्लाह अकबर। और अब मेरे नबी ने आवाज दी ला सलाता इल्ला बे फातिहतिल किताब, नमाज नहीं होगी अगर तुमने सूरह हम्द नहीं पढ़ी। सुनिए रवायत, तुमने बहुत मुत्तफक बैनल फरीकैन रवायतें सुना रहा हूं जिसे सब मानते हो, ला सलाता इल्ला बे फातिहतिल किताब, नमाज पढ़नी है तो नमाज में सूरह हम्द पढ़ो, अगर कोई और सूरह पढ़ दिया तो वह हम कबूल नहीं करेंगे। भाई अजीब है, मेरा जी चाहता है कि मैं जब नमाज शुरू करूं तो सूरह रहमान मुझे बहुत पसंद है। मुझे सूरह रहमान बहुत पसंद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रहमान अल्लामा कुरान खलक इंसान अल्लामा बयान, उसमें रेगिंग भी चल रहा है और मुझे पसंद है। तो मैं सूरह हम को हटा के सूरह रहमान रख दूं, आप इजाजत देते हैं? तो पूरे मजमे से सवाल है। अच्छा भाई, तो बात क्या होगी? भाई रहमान भी अल्लाह वाला, सूरह हम भी अल्लाह वाला, और मैं अपना वाला तो लाना नहीं चाह रहा हूं, अल्लाह वाले को हटा के अल्लाह वाला लाना चाह रहा हूं। मेरा मैसेज पहुंच रहा है? भाई आप मुझे इजाजत दीजिए, चलिए सूरह रहमान आपको पसंद नहीं है तो आप सूरह यासीन पढ़ लीजिए, सूरह हम की जगह पे वो भी अल्लाह वाला है। भाई ठीक है ना, सूरह बकरा पढ़ लीजिए, बहुत सूरह वो भी अल्लाह वाला है। तो यानी अजीब मरहले फिक्र ये है, अजीब मरहले फिक्र ये कि मैं अगर ये चाहूं कि अल्लाह वाले को हटाकर दूसरा अल्लाह वाला ले आऊं तो ये भी हराम है। तो आप अल्लाह वाले को हटाकर अपना वाला कहां से लेके आ गए? पहुंच रहा है ना ये मैसेज? अच्छा भाई, तो अब मैंने सूरह हम्द पढ़ा और ये मेरी मजबूरी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अब कुरान मजीद के इस सूरह का एक छोटा सा मौजजा देखते जाओ, बहुत छोटा सा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मौजू से मुतसिल है और मौजू ही को जस्टिफाई करना चाह रहा हूं मैं। भाई देखो, अल्लाह ने हमें खल्क कर दिया, ठीक नहीं? भाई रुको, कभी ऐसे भी सुना करो जैसे इस बार बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसे भी सुनो जैसे इस वक्त मेरा जी चाह रहा है बोलने का। देखो ये जो सूरह है ना, वो आधा है अल्लाह के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इतना हो गया अल्लाह की तारीफ। और अब उसके बाद जो आधा है वो है बंदे के लिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, यही है ना। आधा अल्लाह के लिए है और आधा बंदे के लिए। अगर तुमने मेरी ये बात आज समझ ली तो यकीन करो कि सूरह हम्द का एक मसला तुम्हारे सामने हल हो गया और कुरान का एजाज तुम्हारे सामने वाजे हो गया कि वो कुरान किस तरीके से बात करता है, कितना कैलकुलेटेड बात करता है। अच्छा भाई, तो अब अल्लाह ने ये सूरा नाजिल किया और निसाब का सूरा बना दिया कि नमाज इसके बगैर मुकम्मल नहीं होगी। आधा है अल्लाह के लिए, समझ गए, आधा है बंदों के लिए। अब मैं एक सवाल करता हूं कि जनाब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे बना दिया, पैदा कर दिया, ठीक है ना। अब मेरा रिश्ता क्या है उससे? कुछ भी नहीं। अब मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, करियर बनाऊंगा, इस दुनिया में रहूंगा, फिर दुनिया से चला जाऊंगा। अब अल्लाह भी इसमें कहां चाहता है? समझ में आई बात? यानी एतराज यूरोप से बार बार किया गया कि भाई अल्लाह ने खल्क किया, हमें इनकार नहीं है, लेकिन अब फायदा क्या है अल्लाह का? अब तो अल्लाह का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो पैदा कर चुका, डन। तो अब हमारा रब अल्लाह से क्या है? खुदा की कसम, इस बात को सोचना। इस सूरे में 7 आयतें हैं, ठीक। पहली 3 पढ़ रहा हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। 3 आयतें हो गई। अच्छा, दरमियान की आयत छोड़ रहा हूं मैं। अब आखिर की 3 पढ़ रहा हूं मैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये दोनों टुकड़े सुन लिया तुमने? 3 अल्लाह से मुतल्लिक, 3 बंदों से मुतल्लिक। दरमियान में क्या रखा है? मालिक यौमिद्दीन है ना दरमियान में। भाई यही तो पॉलिसी मेकिंग है। बंदों और खुदा के दरमियान में अगर कोई वास्ता है तो वो कयामत का है, जाना उसी की बारगाह में। बहुत 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 दकीक मरहला फिक्र था। अब मैं चाह रहा था कि यह दकीक मरहला फिक्र मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए। तो अब मालिक यौमिद्दीन, भाई तवज्जो रहे, ये बुनियाद है कि तुमको झक मार कर अल्लाह की बारगाह में जाना है। तो अब पॉलिसी क्या है? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए ये वो मरहला फिक्र है जहां मैं चाह रहा था कि ये सूरह हम तुम्हारे सामने हल हो जाए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदगार, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत कर दे। रास्ता सीधा है, सिरात के मानी रास्ता, मुस्तकीम के मानी सीधा। रास्ता सीधा है तो रास्ता दिखलाने वाला टेढ़ा तो नहीं हो सकता ना। वो भी वो भी जाहिर है कि सीधा होगा। तो इसीलिए अंबिया और मुरसलीन मकामी इस्मत पे आए हैं। जितने भी रास्ता दिखलाने वाले आए, मकामे इस्मत के ऊपर आए। अच्छा भाई, तवज्जो रखना, इसलिए ये वो मरहले फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं। मालिक सीधे रास्ते की हिदायत कर दे। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर नेमतें नाज़िल की हैं। अल्लाह का रास्ता नहीं, यानी अल्लाह की नमाज में खड़े हुए हैं तो ये नहीं कहते कि परवरदगार अपना रास्ता बतला दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की हैं। भाई ये तो वो मरहला फिक्र है जहां मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मालिक उन लोगों का रास्ता दिखला दे जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की हैं। अब मैं कैसे कहूं कि कुरान में है अल्लाह का रास्ता, वअन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहू, हो मेरा रास्ता है, सीधा है, उसका उसकी पैरवी करो, उस रास्ते पर चलो। तो अल्लाह का भी रास्ता है। अल्लाह ने चल के रास्ता बनाया। भाई देखो ना, तुम चलते हो तो रास्ता बन जाता है, पगडंडी बन जाती है, निशान बन जाता है कि यह रास्ता जा रहा है। तो अब चल के बनाते हैं, तो कभी अल्लाह चला, कभी वो चल सकता है, तो ये किसका रास्ता? ये किसका रास्ता? ये नेमत वाले हैं कौन? अल्लाह कहता है रास्ता मेरा और उस पर है नेमत वाले। तो कुछ ऐसे चलने वाले थे कि जिनका चलना अल्लाह का चलना था। कुछ ऐसे चलने वाले से जिनका चलना अल्लाह का चलना था। कौन है? मग़ज़ूब नहीं है, अल्लाह के गजब का शिकार नहीं है, ज़ालिम नहीं है। ज़ालिम कौन? जो गुमराह। दुनिया में दो ही बड़ी नजासतें हैं, एक है गजब इलाही का शिकार होना और एक है गुमराह होना। देखो तुम जो नजासत के मानी समझते हो ना, ये तो बहुत छोटी नजासतें हैं, सारी नजासतें इन दो के ज़हन में आती हैं। अल्लाह के गजब का शिकार हो गया यानी नजिस हो गया, गुमराह है यानी नजिस है। तो दो ही नजासतें हैं, तवज्जो रहे, दो ही नजासतें हैं। और ये वो लोग हैं नेमत वाले जो दोनों नजासतों से दूर हैं। मैं ये चाह रहा था कि मुझे अपनी ताईद में कोई हदीस न पढ़नी पड़े, कोई आयत न पढ़नी पड़े, कॉमन सेंस से ये बात वादे हो जाए। तो सारी नजासतें या गुमराही में हैं या अल्लाह के गजब में हैं, ठीक है ना? तो जो लोग नजासतों से दूर होंगे वही तो साहिब तथीर होंगे ना। अगर हदीस पढ़ देता तुम कहते भाई देखो ये हदीस ले आए, तो मैं कॉमन सेंस से तुम्हारे सामने एक बात इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। अच्छा भाई, तो अब कुछ हैं जो साहिबान तथीर हैं, बहुत दूर जाना है। और मैं चूंकि 10 दिन का मसला है और मौजू के तकाजों को पूरा होना है, इसलिए मैं मौजू के तकाजे पूरे कर रहा हूँ ताकि सिलसिले फिक्र आगे बढ़ता रहे। रुक जाना भाई इस मसले पर। कहने लगे कि सारी नजासतों से दूर जो पाक हैं वो सारी नजासतों से दूर हैं। देखो भाई, मोहब्बत होती है हमेशा कमाल से, बुराई से तो मोहब्बत नहीं होती ना। कहने लगे ये दावा करने वाले आले मोहम्मद की मोहब्बत का, इनका ख्याल ये है कि आले मोहम्मद साहिबाने तथीर हैं और सारी नजासतों से और सारे ऐबों से पाक हैं। यही दावा है ना। अच्छा, आप भी तशरीफ फरमाए। ये एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है इस मकाम पर, कादिम साहब इसमें ग्रामी है गलबन। और जब मैं पहली मरतबा निस्तर पार के मेंबर में बैठा था आज से 35-36 साल पहले, तो ये यही तशरीफ फरमा थे। और उनकी जगह भी मखसूस है। शायद 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और उनकी सरोसूरत के बाल सियाह थे, आज सफेद है। मेरी भी सरोसूरत के बाल सियाह थे और आज सफेद हो गए हैं। तो कदर होती है ना पुराने सुनने वालों की। तो अब मैं इनके तवसुस से ये जुमला आपको हदिया कर दूं, और ये जुमला अगर आपके मरहल आपके जहन तक पहुंच गया तो मरहला फिक्र आसान हो जाएगा और मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। भाई तवज्जो रखना, सूरह हम के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो ये मग़ज़ूब भी नहीं है आले मोहम्मद, और ये जालिम भी नहीं है, दूर हैं। मग़ज़ूब से भी दूर हैं, जालिम से भी दूर हैं। जो दूर हो वो ताहिर है, ठीक है ना? कहने लगे अगर ये ताहिर हैं तो दुनिया में ये दस्तूर है कि कमाल से मोहब्बत होती है, तो सबने तो माना नहीं, सबने तो आले मोहम्मद को माना नहीं। अगर कमाल होता तो मान लेते। इतराज़ समझ में आ गया? इतराज़ समझ में आया? अगर आ गया तो जवाब दूंगा, वरना नहीं दूंगा, जवाब ही नहीं दूंगा। इतराज़ ये है कि हमेशा इंसान को मोहब्बत होती है कमाल से, और आपका दावा यह है कि वो साहिब तथीर हैं, सारे कमाल उनमें पाए जाते हैं। तो भाई सब मोहब्बत तो करते नहीं, सब मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, जब सब मोहब्बत नहीं करते तो दावा बातिल हो गया कि सारे कमाल उनमें नहीं है। तो आप जानते हो, एक जवाब तो मैं इस मिंबर से 30 साल पहले दे चुका हूं कि भाई पैगंबर अकरम तो सारे ऐबों से पाक है ना, आले मोहम्मद हो या ना हो। आले मोहम्मद सारे ऐबों से पाक हो या ना हो, पैगंबर तो है ना, तो सबने तो नहीं माना और सबने मोहब्बत भी नहीं की। तो जो जवाब वहां दोगे वो जवाब आले मोहम्मद के लिए दे लो, लेकिन अब एक जवाब आज सुनते जाओ, بس تمہارا دعویٰ یہی ہے, تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ سب آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو آیت تو خود کہہ چکی ہے کہ اے آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا, تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور درمیان میں کیا رکھا, ایاک نعبد. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے, اور سننا بھائی سننا سننا, اس لیے کہ میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضے ہیں اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس تیری عبادت, بس تجھ سے مدد. سن لیا؟ روز پڑھتے ہو, پانچ وقت کی نماز میں پڑھتے ہو کہ عبادت صرف اللہ کی, مدد صرف اللہ سے, ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے ایاک نعبد, بس تیری عبادت کسی اور کی نہیں, وہ ایاک نستعین اور بس تجھ سے مدد کسی اور سے نہیں. اب یہ دو ٹکڑے ہیں نا, ایاک نعبد عبادت اللہ کی, ایاک نستعین مدد اللہ سے. اچھا بھائی میں کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اذان دی, جب میں آگے بڑھا اذان دیتا ہوا تو بیچ میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, آیا نہیں آیا. پھر میں اذان دینے کھڑا ہوا, اذان میں بھی درمیان میں آ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ, عبادت فقط اللہ کی اور نہ میرے محمد کا. بھائی یہاں تک آ گئے نا. اچھا اب میں تشہد میں بیٹھا, جسے ہم تشہد کہتے ہیں, دوسرے برادران اسلامی التحیات کہتے ہیں, اس نے کیا کہا, اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پھر رسول اللہ آ گئے, دیکھ رہے ہو, عبادت فقط اللہ کی, پروردگار فقط تیری عبادت, نام آ رہا ہے محمد کا. اچھا اب السلام علیک ایوہ النبی, اگر نبی سن نہیں رہا ہے تو جملہ بیکار ہے. السلام علیکم ایوہ نبی, اگر نبی سن نہیں رہا ہے تو جملہ بیکار, اور اگر سن رہا ہے تو حاضر بھی مانو ناظر بھی مانو. بھائی بہت بہت توجہ رہے, تو ایاک نعبد عبادت فقط تیری کسی اور کی نہیں, اور اس عبادت میں بار بار ذکر محمد. تو اب میں جملہ کہوں, جملہ کہوں, بھائی تم ایاک نعبد سے ذکر محمد نکال دو, ہم ایاک نستعین سے ذکر علی نکال دیں گے. اور پہنچ رہا ہے یہ ویسے, اچھا تو آرام سے سنتے چلو, اور سلسلے فکر کو اب یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے. اور اب ذرا سا سلسلے فکر کو بلند کروں گا, اور دانشور بیٹھے ہوئے صاحبان فکر ہیں, ان تک میری بات پہنچ جائے گی. عبادت صرف اللہ کی, اور اب یہی خدا کی قسم یہی پالیسی ہے تخلیق انسانی کی, عبادت. اگر یہ سمجھ گئے تو میری آج کی محنت سوارت ہے, عبادت بس اللہ کی, اور پیدا کیا ہے اسی لیے. سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, فیصلہ ہے تمہارے اللہ کا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, سورہ بنی اسرائیل. سورہ زاریات میں کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دو, سورہ ہجر میں کہا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے, دیکھ رہے ہو. سورہ یاسین میں آواز دی الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی, हादा सरात मुस्तकीम, अय आदम के बेटो हमने क्या तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे, वो तुम्हारा दुश्मन है, बस मेरी इबादत करो, यही सरात मुस्तकीम है। सुन रहे हो आयात इबादत, ये इबादत क्या पहुंचाई है। अरब सूर्य कुरैश में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले इराफ कुरैश इराफ इमरेनत शताय वसैफ फलयाबुदु रब हाजर बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व अमनहुम मिन खौफ। बस अल्लाह की इबादत करो, खौफ अमन से बदल जाएगा, भूख शेरी से बदल जाएगी, इबादत करो अल्लाह की। यहां तक आ गए मेरे साथ, बहुत आराम से आए हो। अब देखो ये जो मुश्किल मरहले हैं, अगर तुम्हारे सामने कुरान मजीद और हदीस मुबारक के मुश्किल मसले न रखूं तो क्या उनके सामने जाकर रखूं जो कुछ समझते ही नहीं है। बस जाहिर है कि मुश्किल मसाइल तुम्हारे सामने तो पेश किए जाएंगे ना, है ना। तो अब ये मुश्किल मसला सुनना, अब बहुत मुश्किल भी नहीं है तो मैं कहीं ले जाऊंगा। तो मकसद तख्लीक इंसानी इबादत, अल्लाह की डिमांड है इबादत करो, अल्लाह का मुतालबा है इबादत करो, और जितनी भी करो वो कम है। यहां तक आ गए मेरे साथ, अल्लाह का मुतालबा इबादत करो, जितनी भी करोगे वो कम है, इसलिए मुतालबा ही यह है कि इबादत करो। अच्छा इबादत का मतलब फकत नमाज पढ़ना नहीं है, अब मैं ग्रेटर स्कोप पे बात कर रहा हूं, इबादत उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। अब मैं बताऊं खुदा की कसम ये इबादत इतनी मुश्किल चीज है कि सब्र करना इबादत है, सब्र करना इबादत है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े साबिर मशहूर है, सब्र अय्यूब मशहूर है, लेकिन अल्लाह ने उनसे ये नहीं कहा कि अय्यूब तुमने बहुत सब्र किया अब बस करो, नहीं कहा, खुदा की कसम नहीं कहा, कहीं नहीं है। अच्छा नूह अलैहिस्सलाम के लिए कहा, अच्छा शुक्र इबादत है, जैसे सब्र इबादत है वैसे शुक्र इबादत है। नूह अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो हमारा शुक्र गुजार बनता था, बहुत शुक्र किया नूह ने, बड़ा शुक्र किया। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि बहुत हो गया बस करो नूह, ठीक है ना। तो अब जितनी भी इबादत करते जाओ कम है, अल्लाह ये नहीं कहता कि बस करो। यहां तक आ गए मेरे साथ, अब मैं आयत को सनाम कलाम की आयत को रिलेट करूं यहां पर, वमिन लैल फतहज्जत बही नाफिलतन लक। हबीब रात के अंधेरे में तू कुरान पढ़ा कर, नाफिलतन लक ये तेरी मखसूस जिम्मेदारी है, तवज्जो रखना। इसलिए ये वो मरहला फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं और रोक के कोई मैसेज देना चाहूंगा। आ गई वमिन लैल फतहज्जत बही नाफिलतन लक, रात के अंधेरे में हबीब तू कुरान पढ़, यह है नमाज शब जो पढ़ी जाती है, और हम पर तो मुस्तहब है और इंतहाई फजीलत है नमाज शब की, कभी पढ़ के देखना कि यह क्या चीज है। खुदा की कसम किसी उम्मत को अल्लाह ने ऐसी चीज नहीं दी। मैं तुमसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी नमाज शब पढ़ के देखो, नमाज शब का तरीका आम है, वो मिंबर से बताने की जरूरत नहीं है, हम पर मुस्तहब है, रसूल पर वाजिब थी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीलन औ ज़िद अलैह। पूरा जुमला नहीं पढ़ूंगा। नबी ये देखो अब आयत क्या कहती है, नबी तुम पर वाजिब है कि रात को जाग के क्याम करो, इल्ला कलीला थोड़ा सा सो भी लिया करो, निस्फहु आधी रात जागो, अब इन कुछ मिनो कलीला थोड़ा सा कम कर दो, और जीद अलै या थोड़ा सा बढ़ा लो। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए। अब ये जो बात कहने जा रहा हूं बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड है और तुम्हारे ईमान को ताजा करने के लिए कह रहा हूं। भाई सुना आपने, जनाब आप मेरे पास तशरीफ लाएं मेरे घर पर, अच्छा जी चाहे तो थोड़ा सा पहले आ जाएं, जी चाहे तो थोड़ा सा बाद में आ जाएं, जी चाहे तो ठीक वक्त पे आ जाएं, ये कोई तरीका है बात का? भाई आयत में तो यही है। आपने देखा भाई, आप 5 बजे शाम को मेरे पास तशरीफ लाएं। अच्छा आपका जी चाहे तो थोड़ा सा पहले आ जाइएगा, अच्छा जी चाहे तो 5 बजे के बाद आ जाइएगा, जी चाहे तो उसी वक्त में आ जाइएगा। ये तरीका नहीं है, आयत में यही है। हबीब हबीब आधी रात अल्लाह की बारगाह में क्याम करो, थोड़ा सा कम कर दो या थोड़ा सा ज्यादा कर दो, ये तरीका क्या है? ये एतराज है कुरान पर। और आज तुम एक बात सुन के जाओ और इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, खुदा की कसम अगर आले मोहम्मद न हो तो कुरान की एक आयत भी समझ में ना आए। जब आपकी समझ में आ गया, एतराज तो समझ में आ गया ना, तो अरब के बहुत बड़े दानिशवर ने कहा कि भाई ये अल्लाह की किताब है, ये तुम मानते हो, वो मुसलमान नहीं था, उसने कहा ये अल्लाह की किताब, के रसूल से कह रहा है कि भाई आधी रात तक अल्लाह की बारगाह में क्याम करो, अच्छा जी चाहे तो कुछ कम कर लो, जी चाहे तो कुछ ज्यादा कर लो, ये तरीका क्या है बात का? ठीक, घबरा गए सारे मुसलमान। ये बात का वाकई बात का तरीका यह नहीं है, सारे मुसलमान घबरा गए। जब मुसलमान घबराए तो उसके पास आए जो कुरान का वारिस था। अच्छा भी अब रोकें, एक बहुत पढ़े लिखे शहर का बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, मुझे तुम अगर तुम्हारे जहन में कोई जवाब आ रहा हो तो बतला दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। कोई जवाब अगर तुम्हारे जहन में आ रहा है तो मुझे बतलाओ, आ रहा है कोई जवाब? मैं आप मेरे घर तशरीफ ना 5 बजे, जी चाहे तो 4:45 बजे आ जाइएगा, जी चाहे तो 5:15 बजे आ जाइएगा, अगर ठीक वक्त पे आ जाए तो क्या कहना है? सुभान अल्लाह भाई, यही है ना कि आधी रात तक क्याम करो, जी चाहे कम कर लो, जी चाहे ज्यादा कर लो। भाई बातों वही हुई ना, खुदा की कसम, कहां फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल अरब के दानिश्वरों का एतराज है कि ये आपके जद पे जो किताब नाजिल हुई है जुमला क्या है? मुस्कुराए, कहने लगे कि ये तो मौसम के ऐन मुताबिक है, कभी के दिन बढ़े, कभी की रातें बढ़ी, कभी के बराबर है, कभी रातें छोटी होती हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी रातें बराबर होती हैं। जब बराबर हो तो आधी रात तक, जब छोटी हो जाए तो कम कर लो, जब लंबी हो जाए तो ज्यादा कर लो। बहुत आराम से, बहुत आराम से सुनना। अच्छा तो वाजिब किया ना पैगंबर पर रात को खड़ा होना, फतहज्जत व मिन अल-लैल फतहज्जत बही, वाजिब है हबीब रात के एक हिस्से में तुम अल्लाह की बारगाह में कुरान के साथ खड़े हो जाओ, तिलावत करो, यह है नमाज शब। ठीक, रसूल ने किया। अच्छा नूह तुमने बड़ा शुक्र किया, अब बस करो भाई, बहुत हो गया, नहीं है। अब ये देखो मकाम मोहम्मद अरबी तक अब लाया हूं तुम्हें, और अगर ये मैसेज पहुंच गया तो आज गुफ्तगू यहीं तमाम कर दूंगा, ज्यादा तुम्हें रहमत नहीं दूंगा। अच्छा भाई अय्यूब तुमने बड़ा सब्र किया, अब सब्र खत्म करो, बहुत हो गया, मेरी डिमांड से ज्यादा हो गया। नहीं कहा ना किसी नबी को परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी इबादत मेरे मुताबिक से ज्यादा हो गई, खुदा की कसम नहीं कहा, और अगर कहा तो मेरे मोहम्मद के लिए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लतशका, हबीब मैंने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया था कि पूरी रात खड़ा रहे।
वाह 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 वाह
हबीब तवज्जो रखना, हबीब हमने मा अनजलना अलैकल कुरान लितशका, कि तुम पूरी रात खड़े रहो, अल्लाह के मुतालिबे से ज्यादा है या नहीं? जैसा बाप वैसी औलाद, जैसा नबी वैसी जुर्रियत, पूरी तारीख अंबिया में कोई नहीं मिला जो अल्लाह के मुतालिबे से ज्यादा करके दिखला दे। अगर मिला हो तो बतला दो। पूरी तारीख अंबिया में एक नहीं है जो अल्लाह के मुतालिबे से ज्यादा करके दिखला दे सिवाय मेरे नबी के। ताहा मा अनजलना अलैकल कुरान लितशका। अब तुम तक एक मैसेज पहुंचाऊंगा और वो मैसेज पहुंच गया फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसा नबी वैसी जुर्रियत, नबी ने अल्लाह के मुतालबे से ज्यादा किया ना, ठीक। अब जुर्रियत को देखा, देखो भाई कुरान में है यसअलून का माजा युनफिकून, पढ़े लिखे हो इसलिए ये हवाला दे रहा हूं। और आज मैंने जरा डिफरेंट तरीके से बात की है और जरूरी नहीं है कि हर रोज इस तरीके से बात हो, लेकिन अब जब यहां तक आ गया हूं तो यह जुमला जरूर कहूंगा। फिर दोहरा रहा हूं कि रसूल ने अल्लाह के मुतालबे से ज्यादा इबादत करके दिखलाई। और अब दिखलाऊ नबी की औलाद, यसअलून का माजा युनफिकून कुलिल अफ। कुरान में जुमला है कि या रसूल अल्लाह ये बतलाइए कि जो बार बार कुरान कहता है अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, तो कितना खर्च करें? अल्लाह ने जवाब दिया कुलिल अफ, तुम्हारी जरूरत से जो बच जाए वो खर्च करो। मेरे पास बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बहुत बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। वो जुमला फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए नहीं, आप तो समझ गए बात को, ये जो नौजवान छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए ना उनके लिए दोहरा रहा हूं। भाई अल्लाह के का मुतालबा क्या था? रात को कुरान पढ़ो, रसूल ने मुतालबे से ज्यादा किया, ठीक है ना। अब औलाद वो जो नशे कदम पे चले, मेरे पास रोटियां हैं, अच्छा भाई पहले मैं खा लूं, अपनी औलाद को खिला दूं, अपने बीवी बच्चों को खिला दूं, जो बचे वो खैरात कर दूं, यही तो है। अभी नहीं पहुंचे, बात खत्म हो गई। मेरे पास रोटियां हैं, मैं बच्चों को खिला लूं फिर खैरात करूं। तन्हा आले मोहम्मद हैं जो अल्लाह के मुतालबे से ज्यादा सारी रोटियां मिस्कीनों को, यतीमों को, फकीरों को दे देते हैं। गुफ्तगू गुफ्तगू इस मरहले पर तलखीस पा जाएगी। अल्लाह के मुतालबे से ज्यादा करके दिखलाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और अल्लाह के मुतालबे से ज्यादा करके दिखलाया आले मोहम्मद ने। तो अब एक रिश्ता इबादत का रिश्ता, एक रिश्ता अल्लाह से, बस तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। तुम्हारा एक रिश्ता अल्लाह से, तुम्हारा दूसरा रिश्ता, देखो इबादत ही के दायरे में ये सारी बात हो रही है, कायनात से, चूंकि कायनात से इस्तेफादा कर रहे हो। अल्लाह से जो तुम्हारा रिश्ता है वो इबादत का रिश्ता है, कायनात से जो तुम्हारा रिश्ता है वो इस्तेफादे का रिश्ता है। सूरज की धूप, चांद की चांदनी, हवाओं की ताजगी, दरिया, पानी, ये चीजें तुम इस्तेफादा कर रहे हो कायनात से, तो कायनात से रिश्ता है इस्तेफादे का। अल्लाह से रिश्ता है इबादत का, और एक रिश्ता और भी है मुआशरत का, अपने जैसे इंसानों से रिश्ता। तकरीर आखिरी मरहले पे आ गई और अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, पूरी तरह समझ लो फिर मैं इस बात को वाजे करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और यही बात मुकम्मल कर दूंगा। तो अल्लाह से रिश्ता इबादत वाला, वो कहे हम माने, वो हुक्म दे हम हुक्म पे अमल करें। कायनात से रिश्ता, उसे इस्तेफादा करें। और अपने जैसे इंसानों से रिश्ते, अब अपने जैसे इंसानों से जो रिश्ते हैं वो कितने किस्म के हैं? बड़े का छोटे से रिश्ता, छोटे का बड़े से रिश्ता, बराबर का रिश्ता, अपनी जात से रिश्ता। देखो ये सोशल साइंसेज में पढ़ोगे जो मैं इतनी आसानी से तुम्हें बयान करके जा रहा हूँ, ये सोशल साइंसेस के मसाइल हैं। तो एक रिश्ता तुम्हारा अपने से बड़े से, जो तुमसे बड़ा है उससे रिश्ता, ठीक, बाप, और एक रिश्ता छोटे से बेटा। मैं अपने बाप का बेटा हूं, लेकिन मैं अपने बेटे का बाप हूं। पूरी तरह समझ लिया? पूरी तरह समझ लिया ना? अच्छा भाई, तो अब पूरी बात तो सुन लो। मैं अपने बाप का बेटा हूं। देखो, आज मैंने बात सत्य उम्मीद से बुलंद कर दी थी, अब हर रोज तो बुलंद नहीं होगी ना, लेकिन जो कहना चाह रहा हूं वो सुनो और मुझे इजाजत दे दो, फिर सुनना। मैं अपने बाप का बेटा हूं, बड़े से रिश्ता। मैं अपने बेटे का बाप हूं, छोटे से रिश्ता। मैं अपने भाई का भाई हूं, बराबर का रिश्ता। तीन रिश्ते हो गए। अरे अब एक रिश्ता और है, अपनी जात से रिश्ता। मैं हूं कौन भाई? मैं हूं कौन? तो मैं सैयद शोहदा का एक अदना सा जाकिर हूं। ये मेरा रिश्ता है मुझसे। पूरी पूरी बात महसूस करो, पूरी बात महसूस करो, फिर मैं आगे जाऊंगा। मैं अपने बाप का बेटा हूं, अपनी मिसाल दे रहा हूं मैं, बड़े से रिश्ता। मैं अपने बेटे का बाप हूं। तो एक मेरा रिश्ता बाप का है, एक मेरा रिश्ता बेटे का है, दो रिश्ते हो गए। मैं अपने भाई का भाई हूं, बराबर का रिश्ता है। और मैं सैयद शोहदा का एक अदना जाकिर हूं, मेरा अपना जात से रिश्ता है। चार ही तो रिश्ते होते हैं ना, पांचवा कोई नहीं होता। सुन लिया भाई? सुभान अल्लाह तो फरमा रहे हैं, निकला क्या इसमें से? ये जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं भाई, इसमें क्या निकला? और यही मेरा आखिरी जुमला है, और इसके बाद जाहिर है मैं साहब के चंद जुमले तो अर्ज करूंगा। फिर सुनना, ये जो नौजवान बाई तरफ बैठे हैं ना, बहुत से, इन्हें मुखातब कर रहा हूं भाई। तुम अब नौजवान तो नौजवान है, इंशाल्लाह शादियां भी होंगी और बार बच्चेदार भी होंगे। बुजुर्ग अपने बच्चों के बाप हैं, अपने बाप के बेटे हैं, अपने भाई के भाई हैं, और खुद जो भी कुछ करते हैं उनका रिश्ता उनके साथ है। समझ में आ गई बात भाई? बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि अब तो आया है एक जुमला मेरे मौला हुसैन की फजीलत में, एक कुल एक जुमला, कुल एक जुमला कहूंगा। फिर सुनो, फिर सुनो। मैं अपने बाप का बेटा हूं, मेरा एक बाप है, बड़ा रिश्ता। मैं अपने बेटे का बाप हूं, मेरे बेटे हैं, ठीक। मैं अपने भाई का भाई हूं, मेरा भाई है, ये भी ठीक हो गया। मैं सैयद शहदा का जाकिर हूं, मेरा जात से रिश्ता। ये चार रिश्ते हो गए ना, पांचवा कोई रिश्ता नहीं हुआ करता, पांचवा कोई नहीं रिश्ता। अब चलो हुसैन की तरफ। बाप इमाम, ना बेटे इमाम, बराबर का भाई इमाम और खुद इमाम। मैसेज पहुंच गया। इसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली, बाप इमाम, इमाम का बेटा है, नौ बेटे इमाम है, इमामों का बाप है, बराबर का भाई इमाम है, खुद इमाम है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन तक आ गए तो हुसैन की इस फजीलत को याद रखना। एक दिन, पूरा वाकया बहुत लंबा है और उलमा ने इसे बड़ी तफसील के साथ हसनैन का वाकया लिखा है। मैं तुम्हें हुसैन के हवाले से एक जुमला कहूंगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। बस हुसैन इब्न अली, बच्चे गुम हो गए थे और बच्चों को लिया, और एक को रसूल ने गोद में उठाया, उसका नाम था हुसैन। चले घर की तरफ तो कहने लगे, अए मेरे दोस्तों, देखो भाई अभी तो मैं फजाइल पे हूं ना, ये है हुसैन के नाम की तासीर, सदाएं बुलंद हो गई। लेकिन ये जुमला सुन लो। कहने लगे, बहुत से साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो रसूल के साथ थे, हुसैन गोद में है। कहने लगे, तुम्हें बतलाऊं कि खैरुन्नास से अबन व उम्मन कौन है? कायनात में माँ और बाप के एतबार से सबसे बेहतर कौन है? तो उनका या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। कहा जी मेरा बेटा हुसैन। खैर उन्नास अबन व उम्मन, माँ और बाप के एतबार से जो बेहतरीन है वो कौन है? कहने लगे कि या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। कहा मेरा बेटा हुसैन। दूसरा जुमला सुनोगे? जुमले बहुत से हैं, मैं तो सिर्फ दो जुमलों के लिए ज़हमत दे रहा हूं। खैर उन्नास जद्दन व जद्दतन कौन है? जिसका जद भी खैर उन्नास हो और जिसकी जद्दा भी खैर उन्नास हो। भाई जद के मानी जानते हो? जद अरबी जबान का वो लफ्ज है जो नाना और दादा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जो नाना और दादा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जबान में जद। तो जद के एतबार से खैर उन्नास कौन है? कहा या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। कहा ये मेरा हुसैन। यानी हुसैन का नाना भी सबसे अच्छा, हुसैन का दादा भी सबसे अच्छा, हुसैन का नाना भी सबसे अच्छा, हुसैन का दादा सबसे अच्छा। हुसैन के नाना को तो सब जानते, मोहम्मद रसूलल्लाह। हुसैन का दादा कौन था? कौन था भाई हुसैन का दादा? उसका नाम है अबू तालिब। पैगंबर कहे खैरुन्नास, पैगंबर कहे खैरुन्नास। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गईं। अब लोग मुशरिक कहें, कुछ भी कहें, रसूल ने तो कह दिया कि इसका दादा खैरुन्नास था, कायनात के सारे दादाओं से बेहतर था। ठीक है ना? और अगर ये दादा न होता, कल मैं तफसील बयान करके गया था, उसी दादा की नस्ल तो कटी है करबला के मैदान में। भाई कल जो मैंने बनी हाशिम की तफसील बयान की, उसमें क्या अबू तालिब के औलाद से बाहर का भी कोई था? करबला तक बात आ गई तो दो जुमले सुनो, और इससे ज्यादा आज ज़हमत समात नहीं दूंगा। फजाइल पर तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई तो ज़ियारत नाहिया का एक जुमला सुन लो। ज़ियारत नाहिया जानते हो? मेरे मौला साहिब जमान की तरफ मंसूब है। एक ज़ियारत है जो मेरे मौला साहिब जमान की तरफ मंसूब है, उसमें एक जुमला है करबला वालों के लिए। अस्सलामु अला तारहीना अनिल अवतान, उन लोगों पे सलाम हो जिनसे जबरदस्ती वतन छुड़वाया गया। उन लोगों पे सलाम हो जिनसे जबरदस्ती वतन छोड़वाया गया। जो लोग खुशी से वतन छोड़ते हैं वो रोते हुए नहीं जाते। जब हुसैन इब्न अली मदीने से निकले हैं तो कौन सा शख्स था सफर करने वाला जो गिरिया नहीं कर रहा था? अट्ठाईस सफर को निकले हैं ना हुसैन इब्न अली। 28 सफर की रात, देखो ये रात समझना, हमारे यहां एक रस्म हो गई है कि दूसरी मुहर्रम की रात को पहली मुहर्रम मनाते हैं। समझ रहे हो? नहीं, वो एक दिन पहले, एक यानी दिन से पहले जो रात होती है ना, वो उस तारीख की रात होती है। यानी दो मुहर्रम की रात आज नहीं है, आज तीन मुहर्रम की रात है अब जो आएगी, और कल जो गुजर गई वो दूसरी मुहर्रम की रात थी। तो 28 की रात कौन सी हुई? 27 का दिन गुजर के रात को। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है उर्वे गफारी, साहबी रसूल हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो गिरा गोश थे, सुनते नहीं थे। उनका घर आले मोहम्मद के घर के पड़ोस में था। जुमला सुनो, अब तो वक्त ही नहीं रहा। वो गिरागोश बुजुर्ग, उनके मुतालिक मैंने किताबों में पढ़ा कि कान इतने कम हो चुके थे कि काना ला यस्माउ राग, बादलों के घड़घड़ाने की आवाज उनके कान में नहीं जाती थी। 28 रजब की शब में आधी रात को उठ के बैठ गए। जौजा ने पूछा, उर्वा बात क्या है? कहा, मैं तो बादलों की घड़घड़ाहट नहीं सुनता, ये किन बीबियों के रोने की आवाज मेरे कानों? कहा, उर्वा ये फातिमा जहरा की बेटियां रो रही हैं। रोते हुए रुखसत हुए मदीने से। दो जुमले, करबला तक पहुंचाना है, मुहर्रम की दूसरी भी गुजर रही है। 8 ज़िलहिज को हुसैन इब्न अली ने मक्के से रखते सफर बांधा करबला की तरफ जाने के लिए। महमिल तैयार हैं, बीबियां हौदजों में बैठ चुकी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का नाम सुना है ना, बहुत करीबी साहबी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं अली के और शागिर्द भी हैं अली के। अब जाहिर है कि हसन इब्ने अली से और हुसैन इब्ने अली से इनका ताल्लुक क्या होगा। आए, महमिल तैयार थे बीवियों के, कहने लगे कि मौला, हुसैन से कहने लगे, ठीक है अब आप जा रहे हैं, इमाम वक्त हैं, आपका फैसला है, जाएं, लेकिन बीवियों को यहीं छोड़ जाएं। मैंने मक्तल में इसके दो जवाब देखे, मक्तल में मुझे इसके दो जवाब मिले। एक तो जवाब हुसैन ने दिया, शा अल्लाह अन यराहुन सबाया, इब्ने अब्बास अल्लाह की मशीयत यह है कि गिरफ्तार हो जाएं अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में गिरफ्तार हो जाएं। और अब दूसरा जवाब सुनोगे, दूसरा जवाब किसी महमिल से आया कि इब्ने अब्बास बहन को भाई से छोड़ाना चाह रहे हो। अजरकुम अल्लाह। देखो घंटा मुकम्मल हो गया, दो जुमलों की मुझे इजाजत दे दो और बात को मैं मुकम्मल कर दूं। काफिला चला, मुहर्रम की दूसरी तारीख आई। एक मकाम पर हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार किया। बाद रवायात के मुताबिक 7 सवारियां बदली हैं हुसैन ने आगे बढ़ने के लिए, और किसी सवारी ने चलने पर रजामंदी का इजहार नहीं किया, सब सर झुकाए खड़ी रही। कहा, बास जरा ये गांव वालों को तो बुलाओ। गांव वाले आए, कहा, भाई ये तो बतलाओ कि इस गांव का नाम क्या है? किसी ने कहा, युकारुल्हा गादरिया, इसका नाम गादरिया है। फिर पूछा, कोई और नाम बताओ? कहा, इसका नाम नैनवा है। किसी और से पूछा, कहा कि हाँ फरजंद रसूल, इसका एक नाम मारिया भी है, काजरिया नैनवा मारिया। फिर इसरार किया हुसैन ने कि कोई और नाम है। एक बुढ़ा आगे बढ़ा और कहने लगा, फरजंद रसूल युकालो लाह करबला। फरजंद रसूल इसका एक नाम करबला भी है, बस ये सुनना था। कहने लगे, भैया अब्बास उतरने की तैयारी करो, वल्लाह है हा होना मना खुर काबिना, खुदा की कसम यही हमारी सवारियां ठहर जाएंगी। हा होना तुजबा अतफाल होना, यहां हमारे बच्चे जिबा किए जाएंगे। वह हा होना तुजबा हरीम होना, और यहां हमारे अहले हरम असीर किए जाएंगे। अब्बास खैमे लगाओ। बस दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अब्बास ने खैमे लगाए। सबसे पहले जो बीबी उतरी वो शहजादी ज़ैनब थी, सकीना को गोद में लेके एक खैमे में तशरीफ ले गई। जैसे ही बैठी, जर्द मिट्टी उड़ी सकीना के बालों पे गिरी। कहा, फिरदा जा, मेरे भाई को बुला के ला। हुसैन आए, कहा, भैया इस जमीन से तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है, जितनी जल्द मुमकिन हो इस जमीन से निकल जाओ। कहा, बहन अब इस जमीन पर कयामत तक के लिए रहना है। ये कह के बस दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये कह के कहा, अब्बास, मैंने तफसीला छोड़ दी है, अब्बास गांव वालों को बुलाओ, हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। गांव वाले आए, जमीन का मालिक आया, चार मुरब्बा गज बाद लोगों से ज्यादा लिखा है। जमीन 60,000 दिरहम में खरीदी। तहरीरनामा हुआ, जब तहरीर लिखी जा चुकी, बच्ची आखिरी जुमला सुनो, तुम रो चुके, मुहर्रम की दूसरी तारीख है, कहने की जरूरत नहीं है। जब तहरीर मुकम्मल हो गई ना, तो हुसैन ने वो जमीन उनको हेबा कर दी। भाई ये बताओ, क्या हुसैन बगैर खरीदे हुए नहीं रुक सकते थे? मेरा मौला इमाम है, उसने जमीन खरीद ली ताकि अब जो फौजी आए तो वो जा रहे हों, जालिम कहलाए। मालिक बने जमीन के और कहा उस मालिक से कि ये जमीन मैंने तुझे हेबा कर दी। बस तीन शर्तें हैं, ये आखिरी शर्तें सुनो, तुम रो चुके। तीन शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि जब यजीद की फौजें चली जाएं तो हमें दफन कर देना। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई हमारा निशाने कब्र पूछता हुआ आ जाए उसे बतला देना। और तीसरी शर्त यह है कि अगर कोई हमारी कब्र की जियारत के लिए आए तो 3 दिन मेहमान रखना। आखिरी जुमला सुनो, बनी असद के लोग रोते हुए चले, कहा अपनी औरतों को भेज दो। औरतें आई तो कहने लगे, अरे बनी असद की औरतों, मैं खदीजा का नवासा हूं, मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, मैं जैनब का भाई हूं, अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन करने के लिए ना आए तो पानी भरने के बहाने से आना, हमें दफन कर लेना। औरतें रोती हुई जा रही थी, कहा अपने छोटे छोटे बच्चे भेज दो। बच्चे जमा हुए तो कहने लगे, बच्चों, बनी असद के बच्चों, मैं तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों का बाप हूं, मैं अजहर का बाप हूं, मैं सकीना का बाप हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप हमें दफन करने के लिए ना आए तो खेलने के बहाने से आना और एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हम। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ।